बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 19 नवंबर दिन शनिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। 11 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने अचानक एक घोषणा की, 500,000 के नोट बंद करने की।
इसी समय
बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, रेलवे हो, अस्पताल हो, सरकार के अलग अलग विभागों को भी जानकारी हो रही है, क्योंकि इस काम में गोपनीयता बहुत ही आवश्यक थी।
पुराने नोट रद्दी बन गए, तब से आम जनता बैंकों और एटीएम की लाइन में खड़ी है नोट हासिल करने के लिए। सवाल यह है कि 1,000 और 500 के पुराने नोट बंद करके क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक जुआ खेला है? क्या इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव के परिणामों पर भी होगा? मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1800-102-7001 पर। लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, निखिल रंजन से। भारत के छत्तीसगढ़ में पुलिस ने कथित मुठभेड़ में 5 माओवादियों को मारने का दावा किया है। घटना नारायणपुर में आज सुबह की है। पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ के बाद मौके से कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। नारायणपुर के एसपी अभिषेक मीणा ने बीबीसी को बताया कि नारायणपुर और कोंडागांव जिले की सीमा पर तुसपाल बेचा किलम के जंगल में ये मुठभेड़ हुई, जिसके बाद मौके से 5 माओवादियों के शव बरामद किए गए। इससे पहले बुधवार को सुरक्षा बलों ने दंतेवाड़ा के बुरगुम पेरमा पारा के जंगल में 6 माओवादियों को मारने का दावा किया था। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में भी भारी हथियारों से लैस चरमपंथियों ने सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 3 सैनिकों की मौत हो गई। 4 सैनिक गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। हमला तिनसुकिया जिले के तेंगरी में हुआ। खबरों के मुताबिक हमले में आईईडी रॉकेट लॉन्चर, AK-47 राइफल इस्तेमाल किया गया। चरमपंथी हमला करने के बाद भागने में कामयाब रहे। पुलिस का मानना है कि उत्तर पूर्व की आज़ादी की मांग कर रहे 2 गुटों ने संयुक्त रूप से इस हमले को अंजाम दिया। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद ने आज एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसमें देश के नेता नजीब रजाक से इस्तीफे की मांग की गई। नजीब रजाक पर आरोप है कि उन्होंने एक सरकारी फंड से सैकड़ों करोड़ डॉलर अपने निजी बैंक खाते में डाल लिए हैं। हालांकि नजीब रजाक कुछ भी गलत करने से इनकार करते हैं। विरोध में शामिल एक प्रदर्शनकारी अंबिका श्रीनिवासन ने कहा,
टुडे द पीपल हैव शोन अस दैट दिस कंट्री इज वर्थ फाइटिंग फॉर।
आज लोगों ने ये दिखा दिया कि वो इस देश के लिए लड़ने को तैयार हैं। इस देश के लिए लड़ना अनमोल है और मैं समझती हूँ कि इसमें शामिल होकर उन्होंने एक अविश्वसनीय संदेश दिया है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। हुती विद्रोहियों के खिलाफ जंग में यमन का साथ देने वाले गठबंधन ने कहा है कि वो अगले 48 घंटों के लिए युद्ध विराम की शुरुआत कर रहे हैं। इस गठबंधन का नेतृत्व सऊदी अरब कर रहा है। सऊदी अरब का कहना है कि अगर विद्रोहियों और उसके सहयोगी ने इसका पालन किया तो इसे आगे बढ़ाया जाएगा। विद्रोहियों ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो जंग रोकने के लिए तैयार हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में लगातार 4th सप्ताह लोग राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग के साथ सड़कों पर उतरे। लोग इस बात से नाराज हैं कि राष्ट्रपति ने अपने एक दोस्त चो सुन सिल को पर्दे के पीछे रहकर सरकारी कामकाज में दखल देने का मौका दिया। अब तक राष्ट्रपति ने लोगों की इस मांग को कोई महत्व नहीं दिया है और अपना काम पहले की तरह कर रही हैं। शनिवार को सोल में लोगों की एक छोटी भीड़ राष्ट्रपति के समर्थन में भी जमा हुई। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल।
बीबीसी इंडिया बोल।
नमस्कार, स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल कार्यक्रम में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम का विषय आप जान चुके हैं। हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं। नंबर एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं, 1811-7000 और 1800-102-7001। और मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल है वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद जी। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
धन्यवाद।
सवाल ये है जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने, या सिर्फ नरेंद्र मोदी हम कहें, 500,000 के नोट बंद कर दिए। क्या ये कदम एक राजनीतिक जुआ है?
देखिए, सरकार तो ये नहीं मानती कि ये राजनीतिक जुआ है, लेकिन जो पिछले 10 दिनों का अनुभव है वो ये बताता है कि प्रधानमंत्री ने ये निश्चित रूप से एक राजनीतिक दांव फेंका है और उनको शायद इतनी जल्दबाजी थी कि तैयारियां भी पूरी तरह से उन्होंने नहीं की। जिस तरह से सड़कों पर कोहराम मचा, एटीएम में पैसे नहीं हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, किसान और गांव के लोग 10-10 किलोमीटर का सफ़र करके पैसा लेने जाते हैं और खाली हाथ लौटते हैं, 50 लोग के करीब मर चुके हैं लाइनों में खड़े खड़े, और तमाम तरह के जो इकोनॉमी हमारी सकुचा रही, मतलब सिकुड़ रही है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। लोगों के पास पैसा खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए, ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए पैसा हाथ में नहीं है, और ये सब जो उन्होंने किया ये क्यों किया, तो इसका उत्तर मिलता है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, पंजाब वगैरह में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले उन्होंने ये कहा जाता है, ऐसा आरोप लगा रही हैं पार्टियां कि बीजेपी ने तो अपनी जो बहियां थीं, अपने जो पैसे थे वो बदल लिए थे, उनको ठिकाने लगा दिए था, लेकिन मायावती और मुलायम सिंह और कांग्रेस और भारतीय और दूसरे जो निर्दलीय दल हैं, छोटे दल हैं, उन दलों को कोई अवसर नहीं मिला, लोगों को भी अवसर नहीं मिला। इस सीक्रेसी इस कदर रखी गई कि जब तैयारी आपके पास नहीं थी तो कम से कम इतना इंतजाम या तो करते कि जिससे किसी को असुविधा नहीं होती, नहीं तो थोड़ी हड़बड़ी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से 50 दिन की मांग की है और कहा है कि 50 दिन आप कष्ट झेलें, उसके बाद कुछ करते हैं। कार्यक्रम में एक श्रोता को मैं शामिल कर रहा हूँ, उससे राय जान लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं। जी नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं।
नमस्कार जी, मैं श्रीकांत बोल रहा हूँ बैंगलोर से।
श्रीकांत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आप शामिल हो चुके हैं जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप?
सबसे पहले तो ये कहना है कि 500 और 1000 के नोट कम से कम 20-25 साल से प्रचलन में है, हर साल छपते रहते हैं। भाई साहब ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो नोट 30 साल से छप रहे थे वो 2 महीने में छप जाएंगे?
नहीं, सरकार कह रही है कि 6 महीने से हम छाप रहे थे।
30 साल तक जो नोट छाप रहे थे वो क्या आप 2 महीने में छाप सकते हैं? नहीं हो सकता है। फिर आप देखिए कि जिस चीज की उम्मीद में शायद ये काम किया गया है वो उम्मीद तो बहुत दूर की बात है, उसके पहले ही सब मटियामेट होने वाला है, क्योंकि सामने बजट है, सामने इलेक्शन है, आपको ये सारे रुपये बदलने हैं। मुझे तो ऐसा लगता है 30 दिसंबर आएगी नहीं, उसके पहले कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, या तो ये सरेंडर करेंगे या पब्लिक करवा देगी।
या तो ये सरेंडर करेंगे या पब्लिक करवा देगी। श्रीकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इस बात में दम लगता है?
देखिए तृणमूल कांग्रेस और अरविंद पार्टी ने ये मांग की थी कि इसको रोल बैक कीजिए, जो
सरकार ने मना कर दिया, कि
मना कर दिया,
सोच ही नहीं रहा
इस बारे। और मुझे लगता भी नहीं कि सरकार इसको मानेगी या इसको वापस लेगी, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि कुछ और तरह की ढील, कुछ तरह की सुविधाएं और देने की बात आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बीच कह दिया है कि जिस तरह का इंतजाम है आपका उससे तो लगता है कि सड़कों पर हम दंगे ना हो जाएं, सड़कों पर झगड़े ना हो जाएं, और हुए भी हैं कुछ जगह छोटे मोटे झगड़े। तो इसलिए अगर ये अच्छा ये कह रहे हैं कि साहब मुझे 50 दिन का वक्त चाहिए, लेकिन इंडिपेंडेंट लोगों की राय है, इकोनॉमिक टाइम्स में अर्थशास्त्रियों के जरिए एक रिपोर्ट उन्होंने पेश की जिसमें कहा कि मिनिमम 4 महीने लगेंगे, जबकि बाहर के लोग कह रहे हैं कि 6 महीने से पहले ही संभव नहीं है। तो आप 6 महीने तक देश की जनता को त्राही त्राही करने पर मजबूर कर रहे हैं। मान लिया थोड़ी सी कठिनाइयां कम हो जाएं, लेकिन फिर भी पूर्ववत स्थिति होने में, अगर सामान्य स्थिति होने में 6 महीने लगेंगे, तो 6 महीने तक जो लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं उनकी स्थिति क्या होगी,
उनकी स्थिति क्या होगी। कार्यक्रम में एक और श्रोता को मैं कार्यक्रम में शामिल कर रहा हूँ। जी नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो
जी सर।
जी नाम बताएं।
जी सर जी मैं बिहार से बोल रहा हूँ।
अरे नाम तो होगा कुछ
जी, महंत जितेंद्र दास।
अच्छा महंत जितेंद्र दास जी, जी कहिए क्या नरेंद्र मोदी ने ये राजनीतिक जुआ खेला है?
जी नहीं।
ऐसा क्यों लगता है आपको?
हमको लगता है इसलिए चूंकि आतंकवाद का जो श्रेय है वो पुरानी नोट जो है उसके जगह पर वो डुप्लीकेट नोट छाप करके अपने जीविका को चला रहा था जी। सबसे बड़ी बातें यही बात है, मोदी जी का ये राजनीतिक करण नहीं है और लोग को कहना सुनना तो भारतीय लोकतंत्र प्रजातंत्र का मतलब हक है, अधिकार है, किसी को कुछ बोलना, किसी को कुछ कहना सुनना। जैसे विपक्षी लोग, कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं जी। तब इस बीच में जी हम सब जैसे छोटी मोटी विचारधारा के लोग क्या विशेष कर सकते हैं। सवाल बनता है कि मोदी जी पर जो लांछना लग रही है कि वो पहले से सोच समझ करके इस तरह के कार्य कर रहे हैं,
मतलब मोदी सरकार के इस कदम के आप समर्थन में हैं?
जी 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 बिल्कुल जी, है
जी। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। यहीं पर एक श्रोता को मैं और जगह देता हूँ जी। नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं?
जिला बाड़मेर तहसील बुढ़ामारानी गांव बैठा वाले से हरीश भेट बात कर रहा हूँ सर।
हरीश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, बताइए
जी। अभी जो मेरे आपके श्रोता जो कह रहे हैं कि ये जुआ नहीं है, मैं मानता हूँ ये मोदी जी का जुआ है। इसमें मोदी जी ने जो कहा है कि भाई 2000 डेली के रुपए आप निकाल सकते हो, मिनिमम 4000 रुपए। लेकिन जो आम जनता परेशान हो रही है आज, मैं मान सकता हूँ जो अभी फसल बाड़ी की जो गरीब लोग हैं वो फसल बाड़ी कर रहे हैं, तो उसमें 500 के नोट कहाँ चलेंगे नहीं, और 100 वाले और 20 वाले और 50 वाले नोट है नहीं उनके पास में। वो 500 रुपए वाले पैसे हैं और जनता आम लोग परेशान हो रही है, ATM कतारें लगानी पड़ रही है। और बाकी कह रहे हैं ये जो कह रहे हैं कि अभी आतंकवाद को रोकने के लिए, इसमें आतंकवाद कहाँ से रोकेगा? वो कह नकली नोट, तो ये अभी ये 2000 वाले और 500 नोट वाले और अभी नए नोट निकालेंगे वो नकली नोट नहीं छपेंगे?
लेकिन भविष्य में राजनीति की शुचिता के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपको ये लगता है ना कि ये तो इसका तो समर्थन होना चाहिए? जो लोगों के पास बोरे में नोट भरे हैं और वो आज जनता जो है कुछ कुछ लोग फेंक रहे हैं काट पीट करके, तो ये तो बेहतर है ना?
बिल्कुल बेहतर है, लेकिन बेहतर ये आप बेहतर मान सकते हैं लेकिन मैं बेहतर नहीं मान सकता। उनको पहले तो एक्शन लेना चाहिए, उन्हें पहले बताना चाहिए कि हम नोट बदल रहे हैं और आम जनता और वहाँ पे पहले पैसे पहुंच रहे हैं। यदि बीजेपी सरकार को पहले 2000 रुपए नेट पे डाल सकते हैं तो नोट आम जनता के पास क्यों नहीं पहुंच रहे? उनके पास में पहले 2000 रुपए कैसे पहुंच गए?
अच्छा वो तो ठीक है, चलिए बस आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये बताएं कि भाई इसका फायदा नरेंद्र मोदी को होगा कि नहीं होगा? आम जनता में तमाम शोर ऐसे भी हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं।
बिल्कुल, इसमें नरेंद्र मोदी को अपने राजनीतिक में फायदा होगा क्योंकि अभी आतंकवाद वाला मुद्दा चल रहा है, आम तौर पर आतंकवाद का मुद्दा चल रहा है, इसलिए मोदी जी को फायदा होगा। लेकिन सबसे मोटी परेशानी है आम जनता की।
यानी कि आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को इस कदम का फायदा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरीश जी, राजस्थान से ये फोन हमारे पास था। दो तरह की जनता की आवाज़ें हैं, एक सुर के समर्थन में है तो दूसरा जो सुर है वो विरोध में है। और जैसा कि आपने भी कहा, हम सब जानते हैं कि केजरीवाल और ममता इस फैसले को बदलने की मांग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी, अब केजरीवाल और उनकी जो पार्टी है या ममता बनर्जी हैं, इन लोगों को क्या कष्ट है?
देखिए केजरीवाल,
क्योंकि इनकी पूरी राजनीति ही मोदी विरोध पर टिकी हुई है।
नहीं, पहले केजरीवाल ने भी और ममता बनर्जी ने भी, दोनों ने इस कदम का स्वागत किया था। लेकिन जब दूसरे दिन से ATM के बाहर, बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें नज़र आईं और लोगों के दुख दर्द सामने आए, तब इन्होंने इस पर सवाल उठाने शुरू किए। तो एक तो बात ये हुई, दूसरी बात ये भी कुछ हद तक सही है जो आप कह रहे हैं कि मोदी की नीतियों का लॉन्ग टर्म में विरोध करना इन दोनों पार्टियों का एक तरह से धर्म भी है। ये विरोध कर के आधार पर ही टिकी हुई हैं दोनों पार्टियां। और हालांकि ममता बनर्जी को इतना बड़ी चुनौती नहीं है जितनी चुनौती अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में है, लेकिन वहाँ भी उनको लड़ना पड़ रहा है कुछ जिलों में भारतीय जनता पार्टी से। और उनको एक चीज़ भी उनके हाथ में लग गई कि ठीक पहले वहाँ 1 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से बदला गया, बैंक में जमा कराया गया, तो उनको ये भी चीज़ लग गई कि हाँ ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है।
ऐसा तो नहीं है कि केजरीवाल की पार्टी को ये लगता हो कि चूंकि दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार आई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीत कर आई कि वोट बैंक खिसक जाएगा आम आदमी पार्टी का?
नहीं देखिए, इस पे अभी बहुत जल्दी बाजी होगी क्योंकि अभी तो दिल्ली में चुनाव होने में बहुत समय है ना, इसलिए अभी।
लेकिन चलिए उत्तर प्रदेश का रुख
करते हैं। उत्तर प्रदेश का रुख भी अगर आप करते हैं तो शुरू में ये घबराए थे मुलायम सिंह वगैरह, लेकिन अब वो भी जो अपना जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो मतलब उनमें एक आत्मविश्वास झलक रहा है। लेकिन मायावती सवाल उठा रही हैं, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं, मुलायम सिंह ने भी सवाल उठाए हैं, लेकिन ज़्यादा परेशान मायावती दिख रही हैं, क्योंकि मायावती की पार्टी के बारे में ये माना जाता है कि वो चुनाव लड़ने के लिए पहले लोगों से चंदा लेती हैं या पैसा लेती हैं, और अब वो जो पैसा लिया था वो पैसा, उस पैसे का वो क्या करती हैं अचानक, ये बात
इस तरह के दावे ही हैं,
इस तरह के दावे हैं या आरोप हैं इस तरह के।
तो हालांकि जो उनकी पार्टी छोड़ छोड़ के जो लोग बाहर निकले हैं उन्होंने इस बात को पुष्ट किया है कि टिकट के बंटवारे के समय
बिल्कुल
वो इस तरह की बातें कहते हैं, और यही वजह बताते हैं कि उन्होंने मायावती की पार्टी क्यों छोड़ी।
बिल्कुल, लेकिन ये है कि देखिए इसका असर चुनाव पर पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, हालांकि पैसे से चुनाव नहीं लड़ा जाता,
लेकिन
सिर्फ
राजनीति में इलेक्शन में अगर इलेक्शन में शुचिता आ जाए, साफ हो जाए तो कितनी अच्छी बात है।
तो सबसे पहली जरूरत
तो ब्लैक मनी नहीं रही।
नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो इस बात की है कि पार्टियाँ अपना RTI को इजाज़त दें, जिससे कि वो पूछ सकें कि आप कोई चंदा कहाँ से आ रहा है, चंदे का स्रोत तो ये बताते नहीं हैं। आप 20,000 रुपए से कम के चंदा लेते हैं और कैश दिखाते हैं उसको, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों इसके लिए तैयार नहीं है। तो सबसे पहले तो राजनीतिक जो फंडिंग है उसमें शुचिता लाने की ज़रूरत है। क्यों नहीं हमारे देश में जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड चुनाव लड़े जाते।
अच्छा देखिए, इस दरमियान चुनाव आयोग ने बहुत काम किया, चुनाव आयोग ने कहा कि भाई इतने पैसे में आप चुनाव लड़िए उसका बही खाता दीजिए, लेकिन वो सब कुछ नहीं, उसका कोई फायदा नहीं।
वो इसलिए नहीं कि आपका जो खर्च है उस पर तो बंदिश है, लेकिन पार्टी अपनी तरफ से कितना खर्च करेगी। अब जैसे मोदी जी के बारे में चुनाव के बारे में ये आरोप लगाया जाता है, कोई कहता है 10,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ, कोई कहता है 15,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ पार्टी ने खर्च किया। मोदी जी ने जो अपना खर्च किया अपने चुनाव पर वो तो कम है, लेकिन पार्टी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार पर खर्च किया वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है, और उसके लिए तैयार नहीं होते ये लोग कि सब बराबर दिखाएं।
कोई भी अपना बही खाता दिखाना नहीं,
दिखाने को तैयार नहीं है,
और इसका मतलब उनको वो अपने सीक्रेट रखना चाहते हैं। एक श्रोता को शामिल कर रहा हूँ, नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं?
मैं योगेश भोटी जी, NTPC भरूच गुजरात से बोल रहा हूँ।
जी योगेश जी, ये जो पीछे आपने रेडियो चला रखा है इसको अगर आप बंद कर दें तो आपकी आवाज़ ज़्यादा स्पष्ट आएगी।
हाँ,
लेकिन बोलते भी रहिए।
ये नोटबंदी या विमुद्रीकरण जो सरकार ने इस संदर्भ में कदम उठाया है, हेलो,
जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है।
हाँ, तो ये गलत है क्योंकि कालाधन रोकने के, देश के अंतर्गत कालाधन रोकने के जो अन्य विकल्प है उसको उनको निहारना चाहिए था। जैसे कि प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में क्या होता है कि गवर्नमेंट वैल्यू और मार्केट वैल्यू, इसमें डिफरेंस आता है। गवर्नमेंट वैल्यू, गवर्नमेंट सरकार जो बढ़ाती नहीं है, इसलिए बिल्डर भी मार्केट वैल्यू, उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है कंस्ट्रक्शन, वो वसूल करने के लिए बढ़ाते हैं, और वो टैक्स वह उनका घाटा ना हो इसलिए, और जो कस्टमर जो होते हैं वो भी मजबूर हो जाते हैं क्योंकि बिल्डर उतने कीमत में गवर्नमेंट वैल्यू पर मकान नहीं दे पाती।
तो ये तो रियलिटी सेक्टर की सच्चाई है, ये तो रियलिटी सेक्टर की सच्चाई। ये बताइए कि भाई मोदी के इस कदम से भविष्य में क्या होगा, मोदी और मजबूत होंगे?
मुझे लगता है कि जो विश्वास उन्होंने इतना कमाया था गवर्नमेंट 2014 में बनाने के पहले, और गवर्नमेंट स्थापन करने के 2-2.5 साल में जो उनका मीडिया में इतना जो प्रसिद्धि हुई थी, वो उसको उन्होंने ही खुद ही कुटा रखा था, उनकी जो इमेज है उस पर किया है। क्योंकि आम जनता को 2000 के नोट मिल रहे हैं, 2000 के नोट में आप कहीं बाजार में खाना पीना लेने के लिए जाएंगे, छोटे छोटे कपड़े लेने के लिए जाएंगे 400-500 के, तो उनको 1,500 रुपये खुला कोई नहीं देगा। किराना स्टोर है उसमें कहते हैं कि भाई आप 1,000 रुपये की या 500 की या 1,500 की वस्तु ले तभी हम आपको देंगे।
मतलब आप ये कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि जनता का विश्वास जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हासिल किया था उसको आपने खो दिया, उसको उन्होंने खो दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी। मधुसूदन जी, भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर माना जाता है वो वणिक वर्ग है, ठीक है, जो कि बिजनेस करता है, बिजनेस
छोटा ट्रेडर
है, छोटा ट्रेडर है, और खासकर जब उत्तर प्रदेश चुनाव पास में है, तो वो वेटर जो वो वोटर जो कि पुरातन पंथी है और लगातार वोट देता जा रहा है, उस वोटर का क्या होगा, उस वोटर की सोच में क्या होगा?
देखिए, वो जो उनकी असली कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती है वही सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है, और ये माना जा रहा है कि कुछ थोड़ा सा शिफ्ट उसमें से हो सकता है। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी वो जो हैं भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आते हैं उसमें से बहुत ज़्यादा लोग आरएसएस के जरिए वहाँ तक पहुँचते हैं,
जो कि कर्मठ हैं,
जो कि कर्मठ हैं और एक तरह की प्रतिबद्धता है,
प्रतिबद्धता है।
तो इसलिए उनकी प्रतिबद्धता इससे कितनी डामाडोल होगी ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये माना जा सकता है कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उस पर असर जरूर पड़ सकता है।
इमरान खान हैं, इन्होंने फेसबुक पर एक टिप्पणी लिखी है कि गरीब और किसान के आंसुओं की बाढ़ भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगी पहली बार यूपी से।
देखिए, अभी यूपी के बारे में बहुत जल्दी अनुमान लगाना बहुत ठीक नहीं होगा,
क्योंकि राजनीतिक प्रतिबद्धता और विचारधारा भी कोई बहुत बड़ी चीज होती है।
हाँ, कमिटेड इनका वोटर होता है, इसलिए उसको कहना बड़ा मुश्किल होगा अभी, लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा, और अगर ये समझिए कि वोट बिखर गया तो फिर वहाँ त्रिशंकु सरकार बने, मिलीजुली सरकार बने, कैसे कॉम्बिनेशन बने, कहना बहुत ही मुश्किल है।
एक श्रोता को शामिल कर रहा हूँ, जी नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं।
जय हिंद, मैं भद्रघाट मधुबनी बिहार से सूरज मिश्रा बोल रहा हूँ।
भद्रघाट से सुरेंद्र शाह जी? जी
नहीं, भद्रघाट मधुबनी बिहार से सूरज मिश्रा।
सूरज मिश्रा जी,
हाँ, मैं सबसे पहले भाजपा सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह का साहसी कदम उठाया, जिसका मैं बेहद हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। और इसके लिए मैं कह जाता हूँ, इससे फायदा यह है, इससे फायदा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तरह के फायदा हमें देखने को मिलता है।
लेकिन
स्पष्ट होता है कि न कि हमारी सेना बल्कि हमारी सरकार और हमारी जनता भी साहसी कदम उठाने के लिए सक्षम है, और इसका हार्दिक रूप से स्वागत करती है जनता, और जनता सहयोग करती है इस तरह के फैसला को।
सूरज मिश्रा जी, आपने अपनी बात रखी, आप जैसी मिलती।
हेलो सर जी। हाँ सर, मैं कह जाता हूँ इसका विरोध केवल दो ही तरह के व्यक्ति कर सकते हैं, एक व्यक्ति जो मूर्ख होगा वही व्यक्ति इसका विरोध कर सकता है, और दूसरा वो व्यक्ति जिनके पास काला धन होगा वही व्यक्ति सर इसका विरोध कर सकता है, और कोई नहीं विरोध करेगा। मैं भी सर जनता से आह्वान करना चाहता हूँ सर, जो इसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और सरकार को सहयोग दे, क्योंकि ब्लैक मनी दूर करने में आपकी भागीदारी जनभागीदारी होना जरूरी।
जी सूरज मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इनके जैसी ही बात फेसबुक पर एक टिप्पणी आई है सुशील जोशी की, कि राष्ट्र को बचाने के लिए अगर ये राजनीतिक आत्महत्या जैसा कदम हो तो भी ये सच्चा सौदा है। स्पष्ट रूप से दो विचारधाराएं इस पूरे प्रकरण में सामने आ रही हैं।
देखिए,
एक सख्त खिलाफ और दूसरा,
देखिए उन्होंने चार इसके जो है लक्ष्य बताए थे इस कदम के। पहला कि भ्रष्टाचार को दूर करना, ब्लैक मनी को समाप्त करना, तीसरा आतंकवाद पर अंकुश लगाना और नशीली दवाओं के व्यापार को रोकना, ये चार कदम बताए थे। इसमें जो है भ्रष्टाचार कम होगा ये माना जा सकता है थोड़ा,
लेकिन कोई गारंटी नहीं है,
गारंटी कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन काला धन बनना बंद हो जाएगा इसका, इसके बारे में कोई अर्थशास्त्री बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से नहीं कह रहा है, और बल्कि यही कह रहे हैं कि जो काला धन हमारा विदेशों में है, जो ऑलरेडी पूंजीपतियों ने वहाँ भेज दिया है, वो तो वापस आया नहीं, और आपने यहाँ जो है कैश इकोनॉमी है हमारी, सारे लोग अपने घरों में पैसा रखते हैं, उस पैसे को आपने रातों रात उसको काला बना दिया, और उसको वापस लेने के लिए आप कह रहे हैं कि 4000
ही पैसा हासिल करना,
अपने ही पैसे को हासिल करना कितना मुश्किल हो गया है। अब ये देखिए कि ये कहा जा रहा है कि 2.5-2.5 लाख रुपया अगर आप जमा करेंगे बैंक में तो अपने खाते में तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अब ये भी आ रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने इससे पहले कभी 2.5 लाख जमा ना किए हो,
100 रुपए है आपके जनधन खाते योजना में,
जनधन खाते का दुरुपयोग होने लगा
और उसके बाद अचानक वो 2.5 लाख दिखने लगा,
हाँ वो तो उस पर तो समझ में आता है, लेकिन जो आम मध्य वर्ग है अगर उसने किसी ने नहीं जमा कराया उसके खाते पे भी नज़र आएगी। और अब जो है जैसे जो पहले 1000 के नोट में काला धन रखता था, अब 2000 के नोट में रखेगा। आप ये देखिए कि ये एक लंबा गेम है, इसको जो है अभी अभी जैसे कहते हैं ना कि जड़ों में रोग फैला हुआ है पेड़ की और आप पत्तों पर झाड़ पूंछ कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, ये उस तरह का कदम है। इसको ज़रूरत इस बात की थी कि काला धन बनना बंद हो, काला धन जो विदेशों में गया हुआ है वो वापस आए, वो बहुत बड़ा कदम होता जिसके बारे में अभी कम से कम कोई अभी बेनामी जो कानून है, हाँ। संपत्ति कानून, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो शायद कुछ और असर पड़े।
एक श्रोता को शामिल कर रहा हूँ जी, नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं। हेलो हेलो,
राजस्थान से।
जी राजस्थान से, माफ कीजिएगा नाम आपका छूट गया।
नाम डोलू खान।
डोलू खान साहब
जी। हाँ मोहनलाल जी, अगर ये आदमी जो कह रहे हैं इसे भ्रष्टाचार कम होगा, अगर मुझे नहीं लगता इस बात से भ्रष्टाचार कम होगा। अभी तो जैसे ही नोट बंद हुए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इसे कालाबाजारी बंद होगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में कालाबाजारी बहुत बढ़ी चुकी है जी। अभी जो पहले गाँव में शक्कर 40 रुपए किलो मिलती थी, अभी वो सीधे 60 रुपए हो गई है। उनके अलावा मोबाइल रिचार्ज वगैरह सब कीमत बढ़ा दी गई है।
तो मतलब
आम आदमी बहुत ही परेशान हो रहा है। हमें नहीं लगता है भ्रष्टाचार कम होगा या कालाबाजारी बंद होगी, लेकिन इससे तो कालाबाजारी और भी बढ़ी है ज्यादा।
इससे कालाबाजारी और बढ़ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने एक वर्ग की बात की मधुसूदन जी, और एक वर्ग जो जो खासकर जो बिजनेस क्लास है वो जो कि परंपरागत वोटर है, लेकिन एक सैलरी क्लास की अब बात कर लेते हैं। सैलरी क्लास तमाम आंकड़े बताते हैं कि 5% हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कर जो देता है वो 5% देता है,
95%
वो भी नहीं है, 3-4% से लेकर 5 के बीच में है। लेकिन सर्विस क्लास के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो इससे बहुत खुश हैं।
देखिए
उनका सीधा लॉजिक ये है कि भाई सारा कर इस देश को चलाने के लिए हम ही क्यों भरें, तो अगर ये प्रक्रिया चल रही है तो इससे नरेंद्र मोदी को वो सर्विस क्लास का जो सेक्टर का जो आदमी है वो उसको और जुड़ जाए।
अगर इससे हमारा इनकम टैक्स
का
जो नेट है वो अगर और फैलता है तो ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन
भाई बिजनेसमैन है वो अपना घाटा और बही खाता दिखा के, नील बटा सन्नाटा दिखा
वो
के चल देता
है कि बात जो हमारे यहाँ अभी जैसे आपने कहा ना, फौरन दूसरा उसका जो तोड़ है वो जनता ढूंढ लेती है। जो पेशेवर हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, ये पूरा इनकम टैक्स नहीं दिखाते हैं। उद्योगपति, अच्छा उद्योगपति तो जो करते हैं सो करते ही हैं, और कितना नॉन परफॉर्मिंग एसेट है
वो तो
हमारे
अभी, अभी देखिए,
अब आप देखिए
विजय माल्या का 1200 करोड़,
5 लाख करोड़ के करीब अगर NPAs. मैं गलत नहीं है NPA है, वो वापस कैसे आएगा? इतना विदेशों में धन जमा है वो वापस कैसे आएगा? सिर्फ चार, ये कहा जाता है कि जो टोटल जो हमारा 16 लाख करोड़ का जो हमारे नोट हैं मार्केट में, और जिसमें 86% नोट 500 के और 1000 के थे, उसमें सिर्फ 400 करोड़ के नोट ऐसे होते हैं, आंकड़ा बताया गया है, जो कि जाली हो सकते हैं। अब वो जाली नोट की तोड़ तो पाकिस्तान ने अभी से खबरें आने लगी हैं कि उन्होंने इंक जितनी उनके यहाँ लगती है उससे ज़्यादा मंगा ली है, कागज़ ज़्यादा मंगा लिया है, अभी कहीं से पुराना नकली नोट बना भी लिया गया, उसे दिखाया भी गया। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ये चीज़ें रुकनी चाहिए। ये बात सही है, जनता को जो हम ये 5% की जो बात आप कर रहे हैं, जनता चाहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज हो। लेकिन हमारे जो कदम हैं
वो
जैसा कि मैंने शुरू में किया, वो कदम 95% जो हैं वो उस वो तो दूसरी तरफ।
संक्षेप में जंग बहादुर सिंह हैं गोल पहाड़ी से, इन्होंने लिखा है बिल्कुल असर पड़ेगा। 1% ने खता की, आपने सजा दे दी 99% को, तमाम लोग इससे सहमत हो सकते हैं। इतिहास तो याद रखेगा ना नरेंद्र मोदी को,
अभी देखिए
या राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी भविष्य में।
राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ भी सकती है, ये भी इस बारे में भी कोई आज सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। देखिए खुद कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि मेरी जान को खतरा हो सकता है, मेरे पीछे पड़ गए हैं लोग, ये सब बातें कह रहे हैं वो। और मतलब पार्टी
हर दिन पार्टी जो है इस डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति में वित्त मंत्री अरुण जेटली आ जाते हैं,
रोज करने को आ जाते हैं। रिजर्व बैंक इतनी बार आ चुका है तो चूंकि सुचिंतित नहीं था, पहले से सोच विचार करके ये कदम लागू नहीं किया, इसलिए सब दिक्कत पेश आ रही है। जो स्कीम थी वो मैं कहता हूँ कि अच्छी स्कीम थी, अच्छे उद्देश्य से
उसका आयोजन
क्रियान्वयन जो है बिल्कुल बिल्कुल
अच्छा नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया मधुसूदन आनंद जी। और कार्यक्रम में अब बुनना समाचारों का वक्त है। अगले कार्यक्रम घटना चक्र में फिर आपसे मुलाकात होगी। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।